तदिंद्र सन्निदष्ट मुपेन्द्र यद्वचा क्षणम मया विश्वजनीन मुच्यते समस्त कार्येषु गतेन दुर्यता महेषु दिविशद तद भवता निशम्यताम। श्लोक संख्या 41 अन्वय। तत् उपेन्द्र इंद्र सन्निदिष्टम विश्वजनीयम यत् वचा क्षणम मया उच्यते तत् ऐद्विषः समस्त कार्येषु धुर्यताम गतेन भवता निशय्यताम। समान अहिदेष्टिव इति अहिद्विट तस्य अहिद्विषः तत्पुरुष। वैयाकरण धुर्यताम धूरम शब्दात धूरो यड्डको इति यत् प्रत्यय ततः तल अहिद्विषः अहिद्विषः धन के निशम्यताम निधन शम धन कर्मणि लोट धन ता धन यक। हिंदी अनुवाद। इसलिए उपेन्द्र इंद्र के द्वारा संदेश के रूप में भेजे हुए सकल लोक हितकारक जिस वचन को मैं क्षण भर में कह रहा हूँ इंद्र के समस्त कार्यभार को संभालने वाले आप उसे सुनिए। टिप्पणी धुर्यताम गतेन भारवाहकता को प्राप्त हुए इंद्र के समस्त कार्यों का भार अपने ऊपर लेकर उन्हें पूर्ण करने वाले उपेंद्र इंद्र के छोटे भाई इंद्रादि देवों को पराजित कर तीनों लोकों का आधिपत्य पाने के बाद जब असुर राज बलि यज्ञ करने लगा तब दीति की प्रार्थना से भगवान विष्णु वामन का रूप धारण करके बलि की यज्ञशाला में पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने तीन पग भूमि बलि से यज्ञ अवसर पर दान रूप में मांगी। उसके स्वीकार करने पर विष्णु ने तीनों लोगों को विराट रूप धारण करके केवल तीन पग में नाप लिया। तब सपरिवार बलि को पाताल लोक में भेजकर तीनों लोगों का राज इंद्र को दे दिया। उनके इस सत्कार्य से प्रसन्न होकर देवगण उन्हें उपेंद्र के पद पर अभिषिक्त कर अपने धाम चले गए। अभूत भूमि प्रतिपक्ष जन्मना भियाम तनुजस्तप नधु तीर्धिते यमिंद शब्दार्थ निशोदनम हरे हिरण्य पूर्वकम कश्यपुम प्रश्छक्ते। श्लोक संख्या 42 अन्वय। प्रतिपक्ष जन्मना भियाम अभूमि तपनधु दिते तनुजा अभूत हरे इंद्र शब्दार्थ निशूदनम यम हिरण्य पूर्वकम कशिपुम प्रचक्षते। समास प्रतिकूल पक्षो यस्य सा प्रतिपक्ष शत्रु तस्मात् जन्म यासाम ता प्रतिपक्ष जन्मानः तासाम प्रतिपक्ष जन्मनाम बहुव्रीहि हिरण्यम पूर्व यस्यासो हिरण्य पूर्वम तम हिरण्य पूर्वकम बहुव्रीहि। वैयाकरण भियाम बीधन के प्रचक्षे प्रधन चकझन झा इंद्र परमेश्वरार्थ कात इंदी धातो ऋजेन्द्र इत्यादि ना रंत प्रत्यांत ओणादिको निपाता नुमांगमश्च। हिंदी अनुवाद। शत्रुजन विभीषिकाओं का अविषय अर्थात शत्रु से नहीं डरने वाला सूर्य के समान तेजस्वी दिति का पुत्र हुआ जिसे लोग परमेश्वरमान इस शब्द के अर्थ को नष्ट करने वाला हिरण्यकशिपु कहते हैं। टिप्पणी पुराणों के अनुसार बैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय को शापवश राक्षस होना पड़ा जो प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण तथा तीसरे जन्म में शिशुपाल तथा दंतवक्त्र के रूप में उत्पन्न हुए। उनकी मुक्ति के लिए ही भगवान को अवतीर्ण होना पड़ा। हिरण्यकशिपु के संबंध में विशेष जानकारी के लिए इसी सर्ग के 47वें श्लोक की टिप्पणी को देखें। समत सरेणासु इत्योपेयुषा चिराय नामना प्रथमा विधेयताम भयस्य पूर्वावतरस तरस्वीना मनससु येन धुस्सदाम न्यधियत। श्लोक संख्या 43 अन्वय। समस्त सरेण असुर इति नामना चिराय प्रथमाभिधेयाताम उपेयुषा तरस्वीना येन धुस्सदाम मनसु भयस्य पूर्वावतरा न्यधियत। समास मत्सरेण सहितम समस्तरण तेन समस्तरेण दिवि सिदंति गच्छन्ति इति धुस्सदा तेषां धुस्सदाम। वैयाकरण तरस्वीना तरस शब्दार्थ अस्यामा मेघास्त्र जो विनी इति विनी असुर असधन उरन धुसदाम दिवि स्थान शत धन के पूर्वावतरा पूर्व धन अवधन अप रिदोरप इति अप प्रत्यय न्यधियत नी धन धा धन लंग धन ता। हिंदी अनुवाद। दूसरे के शुभ से द्वेष करने वाले तथा असुर इस नाम की बहुत काल के बाद प्रथम वाच्यता को प्राप्त हुए अर्थात सर्वप्रथम असुर कहे जाने वाले जिस हिरण्यकशिपु ने देवताओं के मन में सर्वप्रथम भय का संचार किया। दिशान अधिशांश चतुरो यतः सुरान पास्य तम राघहता शिशेवीरे अवापुराभ्या ततश्चला इति प्रवाद मुच्चेर्य शंकर श्रिय। श्लोक संख्या 44 अन्वय। श्रिया यता दिशाम अधिशान चतुरा सुरान अपासितम रागहता शिशे विरे तथा आरभ्य अयसंकरम चला इति उच्चैः प्रवादम अवापु। समास रागेण हता रागहता न यश अयस अयश करोतीति अयशंशर करह तम अयशंशकरम। वैयाकरण विषाम ऋत्विक दघ्रिक इत्यादिना क्विप शिशे विदे शेव धन लिट धन इरे आरभ्य आधन रबधन कत्वा धन लेप अवापु अवधन आवधन लिट धन जी धन उस। हिंदी अनुवाद लक्ष्मी जिस समय से दिशाओं के स्वामी चार देवताओं को छोड़कर अनुराग से आकृष्ट होकर उसकी सेवा करने लगी अर्थात उसके पास रहने लगी तभी से उसने लक्ष्मी चंचल है इस दुष्कृति की करने वाली महती लोक निंदा को प्राप्त किया। अर्थात लक्ष्मी जिस समय से चारों स्वामी इंद्र यम वरुण और कुबेर को छोड़कर दिक्पालों से यह हिरण्यकशिपु अधिक वीर है इस प्रकार की भावना रूप हिरण्यकशिपु के अनुराग से आकृष्ट होकर उसकी सेवा करने लगी तभी से वह लक्ष्मी चंचल है इस दुष्कृति की करने वाली महती लोक निंदा को प्राप्त हुई। पुराणी दुर्गाणी निशांत मायुधम बलानी सुराणी घनाश्च कंचुका स्वरूप सुभैक फलानी नाकिनाम गरणिक मानशंकया तदादि चक्रीरे। श्लोक संख्या 45 अन्वय नाकिनाम गड़े यम आशंक्यम तदादि स्वरूप शोभेक फलानी पुराणी दुर्गाणी चक्रीरे आयुधम निशातम बलानी सुराणी चक्रीरे कंचुका घना। समास सकाला आदिरश्मिन तत्तदादि तद्धता स्या तथा स्वरूपस्य शोभा स्वरूप शोभा स्वरूप शोभा एव एकम फलम येषां तानि स्वरूप शोभेक फलानि तत्पुरुष गर्भ बहुब्रीहि। वैयाकरण निशातम निधन शोधन कक्त साक्षोदरेंत स्याम इति इत्यविकल्पात पक्षे आत्वम चक्रिरे क्रीधन लिधन इरे। हिंदी अनुवाद देवगणों ने जिस हिरण्यकशिपु को बाधक समझकर तब से लेकर अर्थात हिरण्यकशिपु के समय से ही बाह्य शोभा ही जिनका एकमात्र प्रयोजन रहा था उन नगरों को दुर्ग बना लिया अस्त्रों को तीक्ष्ण कर लिया सेनाओं को सुरवीर बना लिया और कवचों को सुदृढ़ एवं दुर्भेद बना लिया अर्थात हिरण्यकशिपु के भय से देवगण सब साधनों को युद्ध के योग्य बनाकर सावधान रहने लगे। सा संची ऋषिणु भुवनांतरेषु याम यदृक्षया श्रीयदाश्रय श्रिय अकारादि तस्य मुकुटोप लक्षंखल करैष्णिक संध्यम त्रिदर्शे दिशे नमः। श्लोक संख्या 46 अन्वय भुवनांतरेषु संचिरिष्णु श्रिय आश्रय स यदृक्षया याम दिशम अश्रीषियत मुकुटोप शंखल करै त्रिदशे त्रिसंध्यम तस्य दिशे नमः अकारि। वैयाकरण संचरिष्णु संपूर्वाचर धातव अलंकृत इत्यादिना चरेष्ण रुच प्रत्यय अशिष्यत श्री दनलुंग दंतिप क्षणिद शुभ्य कर्तरी चंग इति चंग ततो द्वित्वादि कार्य तत यंगा देशाकारी क्री धन कर्मणी लुंग ता चिण भावर कर्मणो इति चिण चिणो लुक इति चिणस शब्दस्य लुक। हिंदी अनुवाद अन्यान लोकों में अथवा लोकों के मध्य वर्तमान प्रदेशों में घूमने वाला लक्ष्मी का आश्रय वह हिरण्यकशिपु स्वेच्छा पूर्वक जिस दिशा में पहुंचता था मुकुटों में लगे हुए रत्नों पर हाथ रखे हुए देव लोग उस दिशा के लिए तीनों संध्याओं में नमस्कार करते थे। टिप्पणी त्रिदर्श परिमाण में शाम या मल्लिकनाथ कृत व्याख्या ठीक प्रतीत नहीं होती है क्योंकि देवताओं की संख्या 30 नहीं है बल्कि 33 है 12 आदित्य हैं 8 वसु 11 रुद्र 1 प्रजापति 1 वशटकार इस प्रकार सब मिलाकर 33 हुए। षटाक्ष छटा भिन्न धनेन विभ्रता निश्चिह तहिम तनुम तनुम तब्या सम्मुग्ध कांता स्तन संग भयंग गुरै रुरो विदारम प्रतिचस्करे नखै। श्लोक संख्या 47 अन्वय निरसिंह अतनुम सहिम तनु विभर्ता तथा छटा भिन्न घनेन तव्या समुग्ध कांता स्तन संग भंग गुरे नखे उरो विदारम प्रतिचंस करे। समास न तनु अतनु ताम अतनुम नहीं तत्पुरुष सियास ए सही ताम सहिम सटानाम छटा सता छा छटा ताभि भिन्ना घना येन सा ते सताश छटा भिन्न घनेन तत्पुरुष गर्भ बहुब्री। वैयाकरण सहिम सी धन अर्धन लिप उरो विदारम उरस धन विद्री धन रमुल परिक्लीश माने चा इति डिमुल प्रत्यय प्रतिश्चस करे प्रतिपूर्वात कर धातु कर्म लिचरि क्षत्रिय ताम इति गुणा हिंसाया प्रतिश्च इति सुडागमा। हिंदी अनुवाद हे निरसिंह पुरुषोत्तम तथा सिंह रूप धारी श्री कृष्ण विशाल सिंह शरीर को धारण करते हुए गर्दन के बालों के समूह से बादलों को भिन्न भिन्न करने वाले आपने उस हिरण्यकशिपु को नवरमणी के स्तनों के संपर्क से भी टेढ़े हो जाने वाले नखों से पेट फाड़ कर मार डाला। टिप्पणी, अपनी कठोर तपस्या से भगवान शंकर को प्रसन्न कर हिरण्यकशिपु नामक दैत्य ने उनसे वरदान मांगा कि मैं किसी नक्षत्र लग्न दिन रात पक्ष मास वर्ष में किसी देव गंधर्व मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग आदि से नहीं मरूं। ईश्वर को पाने के बाद अपने अबद्ध मानकर वह देवताओं और ऋषियों को भी सताने लगा तथा यज्ञादिकों को नष्ट करने लगा। यहाँ तक कि ईश्वर के परम भक्त अपने पुत्र प्रहलाद को भी ईश्वर भक्ति न छोड़ने के कारण मारने के लिए अनेक प्रयत्न करने लगा। जब वह प्रहलाद को किसी प्रकार भी न मार सका तब उसने एक दिन गोधूली के समय को खंबे में बांधकर स्वयं तलवार से उसका सिर काटना चाहा। इतने में ही भगवान विष्णु ने नृसिंह रूप धारण कर हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में लेकर अपने नखों से उसके वक्षस्थल को फाड़कर मार डाला, ऐसी पौराणिक कथा है। विनोद मिच्छन्नथ दर्प जन्मनो रणेन कंडवा स्त्री दशे समम पुनः सरावणो नाम निकाम भीषणम बभू रक्षा छत्ररक्षणम दिवा। श्लोक संख्या 48 अन्वय अथ स पुनः त्रिदशे समम रणेन दर्प जन्मना कंडवा विनोद मिच्छन दिवा शक्त रक्षणम निकाम भीषणम रावणो नाम रक्ष बभु। समास, दर्पा जन्म यस्या सा दर्प जन्मा तस्या दर्प जन्मना बहुब्रीहि भीष्यति इति भीषणम निकाम भीषणम निकाम भीषणम तत्पुरुष व्याकरण विनोदम विधन उदन खै इक्षण इसधन कर्तरी क्षत्री बभु भूधन लिप। हिंदी अनुवाद, इस हिरण्यकशिपु की मृत्यु के बाद वही हिरण्यकशिपु फिर से देवताओं के साथ युद्ध के द्वारा अहंकार जन्य खजुलाहट को दूर करने की इच्छा से स्वर्ग की सुरक्षा को नष्ट करने वाला नितांत भयंकर रावण नामक राक्षस हुआ। प्रभुर भूभूषुर भुवन त्रयस्य यह शिरोतिरागात दशम चिकर्तिषु अतर्क यद विघ्नमिवेष्ट साहस प्रसाद मिच्छान सदृशम पिनाकिन। श्लोक संख्या 49 अन्वय स भुवन त्रयस्य प्रभु बभूषु अतिरागात दशम शिरा चिकर्तिषु इष्ट साहस इच्छा सदृशम पिनाकिन प्रसादम विघ्नम इव अतर्कयत। समास, समान इव पश्यति सदृश इच्छा सदृश इच्छा सदृश तम इच्छा सदृशम तत्पुरुष त्रय अव्या अस्यति त्रयम् भुवनानं त्रय भुवनत्रयम् तस्य भुवनत्रयस् इष्ट साहस यस्यासो इष्ट साहस बहुभिः। व्याकरण, बभूषु सन्नतात् भूधातौ सन्नशंक भिक्ष उ इति उ प्रत्यय चिकर्तिषु क्री धन संधन उ अतर्क्य तर्क धन स्वार्थे ऋच धन लंग तिप। हिंदी अनुवाद, तीनों लोकों का स्वामी होने की इच्छा करने वाले अते शिवजी की अतिशय प्रसन्नता के लिए अत्यधिक भक्ति से दसवें सिर को काटने की इच्छा वाले महासासी जिस रावण ने इच्छा अनुकूल शिव के वरदान को विघ्न के समान समझा वह रावण नाम का राक्षस हुआ, ऐसा पूर्व श्लोक 148 के साथ अन्वय करना चाहिए। टिप्पणी, एक बार रावण श्री शंकर भगवान को प्रसन्न करके तीनों लोगों का राजा बनने की इच्छा से अपने सिरों को काट काट कर अग्नि में हवन करने लगा। इस प्रकार 9 सिरों के काटने के बाद जब वह 10वां सिर भी काटने लगा तो शिव जी ने प्रसन्न होकर उसकी इच्छा अनुसार वरदान दिया, ऐसी शिव पुराण में कथा है। समुद्र शीपन या पृथ्वी भृताम वरम वरपदानस्य चकार शूलिना त्रशत्तु शारादि सुता सभ्रम स्वयं ग्रहाश क्लेश सुखेन निष्क्रयम। श्लोक संख्या 50 अन्वय, या पृथ्वी भृता वरम समुद्र शीपन सुलीन वरप्रदानस्य अशत्तु शारादि सुतान सभ्रम स्वयं ग्रहाश क्लेश सुखेन निष्क्रयम चकार। व्याकरण, समुक्षीपन समधन उद्धन क्षिपधन कर्त्री क्षत्रि पृथ्वी भृताम पृथ्वी धन भ्रीधन किप चकार क्रीधन लिट्टि प्लल शूलिना सुलधन इनी। हिंदी अनुवाद, पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को ऊपर उठाते हुए जिस रावण ने भयभीत पार्वती के द्वारा घबराहट पूर्वक स्वयं किए गए कंठ ग्रह जन्य आलिंगन से उत्पन्न सुख से शिव जी के वर प्रदान का बदला चुका दिया वह रावण नाम का राक्षस हुआ। टिप्पणी, एक समय क्रीडाशत रावण कैलाश पर्वत को हथेली पर उठाकर उसे गेंद की तरह से उछालने लगा। पर्वत के हिलने से पार्वती जी डर कर शिव जी के गले से लिपट गयी, इससे शिव जी को अपार सुख हुआ। लेकिन पार्वती के डर को दूर करने के लिए शिव जी ने कैलाश को स्थिर करने के लिए उसे अपने वाम चरण के अंगूठे से दबा दिया जिससे रावण का हाथ उसी के नीचे दब गया। तदंतर जब रावण ने श्री तांडव स्तोत्र रचकर शंकर जी की स्तुति की तो शिव जी ने प्रसन्न होकर अपने चरण को हटा लगा लिया। तब रावण ने अपने हाथ को छुड़ाया। पुराणों में अनेक प्रकार से यह कथा वर्णित है।